स्कंद पांचवा है, अध्याय 24 और श्लोक संख्या 27। तस्याचरितम् उपरिष्टाद्विस्तरिष्टे तस्य भगवान् स्वयं अखिल जगद्गुरु नारायणो द्वारि गदापाणि अवतिष्ठते निज जलानुकम्पितहृदयो येन कुंकुच्छेन पदादशतन्दरो योजना युतायुतं दिग्विजय उच्चार्पितः। तस्य बलि महाराज का अनुचरितम चरित्र वर्णन उपरिष्टा भाग के यानी कि पर्वती आठ स्कंद में विस्तर से विस्तार से वर्णन किया जाएगा। यस्य जिसका भगवान श्री भगवान स्वयं अखिल जगत गुरु तीनों लोकों के गुरु नारायण साक्षात नारायण द्वारी द्वार पर गदा पाणि हाथ में गदा लिए हुए अवतिष्ठते खड़े रहते हैं। निज जन अनुकंपित हृदय जिनका हृदय अपने भक्तों के लिए सदैव दया से पूरित रहता है ये जिसके द्वारा अंगुष्ठ न बड़े अंगूठे से पड़ा अपने पांव का दशकंदर दस सिरों वाला रावण योजन अयुत अयुतम 80,000 मील की दूरी दिग्विजय बलि महाराज पर विजय प्राप्त करने के हेतु उच्चाटित फेंक दिया। धन्यवाद। सुखदेव गोस्वामी बोले हे राजन भगवान में बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूं। तीनों लोके के स्वामी श्री भगवान जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु है महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण किए खड़े रहते हैं। जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया तो वामन देव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील की दूरी पर फेंक दिया। मैं बलि महाराज के चरित्र का विस्तृत वर्णन आठवें स्कंद में करूंगा। तात्पर्य नहीं है लेकिन अभी और श्लोकों के लिए भी एक वर्णन है। अभी पृथ्वी से नीचे लोगों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। ये कल ले तो सब सारी सीरीज में आ जाएगा क्योंकि कई में तात्पर्य है। तथो अभिस्तवाकले मयो नाम दानवेन्द्रिय स्त्रीपुराधिपति भगवता पुराण त्रिलोकिशम चिकित्सुना निर्दग्ध स्वर पुरत्रयस्तादालपतो मायाविनाम आचार्यो महादेवेन पुररक्षितो विगत सुदर्शनो भयो महीयते। तथा सुतव नाम के लोक के अधस्ता नीचे तलातल तलातल नाम का लोक में मय मय नाम का दानव इंद्र दानवों का राजा त्रिपुर अधिपति तीनों पुरियों का ईश्वर भगवता सर्वशक्तिमान द्वारा पुरारी भगवान शिव द्वारा जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है त्रिलोक तीनों लोकों का समर सौभाग्य चितुसना काम करने वाला निर्दग्ध जला दिया स्वपुर त्रय जिसकी तीनों पुरियां तत्प्रसाद भगवान शिव के अनुग्रह से लब्ध प्राप्त किया गया पद राज्य मायाविनाम आचार्य समस्त मायावियों के स्वामी यहाँ देवी भगवान शिव के द्वारा परिरक्षित सुरक्षित विगत सुदर्शन भय जो श्री भगवान तथा उनके सुदर्शन चक्र से भयभीत नहीं है वही यते आराधित है। अनुराग सुकल लोक के नीचे तलातल नाम का अन्य लोक है जो नए दानव द्वारा शासित है। मैं इंद्र जाल की शक्तियों से पूर्ण समस्त मायावियों के आचार्य स्वामी के रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है तीनों लोक के लाभ के लिए मय के तीनों राज्यों को जला दिया किंतु बाद में उसे प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया। तब से भगवान शिव मय दानव की रक्षा करते हैं इसीलिए वह सोचता कि उसे भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं है। तथो अभ्यस्त महाकले काम सर्पाणाम नैक शीर्षाम क्रोध वसो नाम कुह कत चक्र काल्य सुशेनादि प्रधान महाभोगवंत पतत्री राजाधिपते पुरुष बाहाधन वरतम उद्वज्यमान स्वकलत्रापत्य सहकुटुंबेन संगेन कचितत्रमता निरहन्ति। तथा तलातल लोक से अवस्थात नीचे महातल महातल नाम का लोक में कावेन्द्रयाणाम कद्रु की संतानों का सर्पाणाम जो सर्प है वह एक शीर्षान जो अनेक होने वाले क्रोध वश सदैव क्रोध से वशी हो नाम नामक गण समूह कुहक कुहक तक्षक तक्षक काल्य काल्य सुषेण सुषेण आदि इत्यादि प्रधान प्रमुख महाभोगवंत समस्त प्रकार के भोगों में लिप्त पतत्री राज अधिपति समस्त पक्षियों के अधिपति गरुड़ से पुरुष बाहर श्री भगवान को ले जाने वाला अनवतराम निरंतर उद्विजमान भय भी स्व अपने आप कलत्र अपत्य स्त्रियों तथा संतानों सूरत मित्र कुटुंब कुटुंबीजन संगेन साथ में क्वचित कभी कभी प्रवक्ता क्रुद्ध विरहंती विहार करते हैं खेलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद जैसे भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा तलातल के नीचे एक लोक महातल कहलाता यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फलों वाले कद्रु की सर्प संतानों का आवास है। इन सर्पों में कुहक तक्षक काल्य तथा सुषेण प्रमुख है। महाकल के सारे सर्प भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भय से सदैव आतंकित रहते हैं किंतु फिर भी उनमें से कुछ अपनी पत्नी संतान मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ विहार करते रहते हैं। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं यहाँ बताया गया है कि महाकल के लोक के सर्प अत्यंत शक्तिशाली तथा अनेक फण वाले होते हैं। वे अपनी स्त्रियां तथा पुत्रों के साथ रहते हुए अपने को परम सुखी मानते हैं यद्यपि उन्हें गर्व का भय बना रहता है जो उनको नष्ट करने के लिए जाता है। यही भौतिक जीवन का विधान है। भले ही कोई कितने कठिन परिस्थितियों में क्यों न रहे तो भी वह अपनी पत्नी पुत्र मित्र तथा कुटुंबियों के मध्य अपने को सुखी मानता है। उसके बाद दो श्लोक है जिसमें तात्पर्य नहीं है और सारा अध्याय समाप्त है। वो भी एक पाताल लोक के अवैध सातल और पाताल की बातें हैं वो सुन लेते हैं। अतः अवस्था के रसातले दैत्रेया दानवाः पाण्डवो नाम निवात कवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिनः इति गुरुप्रत्यनिका उपत्याह महोजसो महासाहसिनो भगवतः सकल लोक अनुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतक लालक लोपाना विलेशया इव वसंती ये वै सर्व इंद्रिय वाद्य मंत्र्या वर्ण्या अभिवेन्द्रिया विभक्ति तथा अधस्ता नहातल के भी नीचे रसातले रसातल में दैते या दीति के पुत्र दानवा दनु के पुत्र प्रणय नाम यानी पणि नामक निवात कवच निवात कवच कालया काले हिरण्यपुरवासी हिरण्यपुरवासी इति इस प्रकार विवधु प्रत्यनिका देवों के शत्रु उपत्या जन्म के महाओजस अत्यंत ओजस्वी महासाहसीन अत्यंत क्रूर भगवत भगवान का सकल लोक अनुभावस्य जो समस्त लोकों के लिए मंगलकारी है हरे श्री भगवान का एव निश्चय ही तेजसा सुदर्शन चक्र से प्रतिहत पराजित बल शक्ति अवलेपाहार तथा गर्व शारीरिक बल के कारण विलपिशया सर्प इव सदृश वसंती रहते हैं ये जो वै निसंदेह सर्वया शर्मा द्वारा इंद्र द्वितीया इंद्र की द्युति वाग्भिः शब्दों से मंत्र वर्णादि मंत्र के रूप में इंद्रात राजा इंद्र से विद्यते रहते हैं डरते हैं। अनुवाद तात्पर्य महातल के नीचे रसातल नाम का लोक है जो दीति तथा दोनों के आसुरी पुत्रों का निवास है वे पणि निवास कवच काल्य तथा हिरण्यपुरवासी कहलाते हैं। ये देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति जीवों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर हैं और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोकों के अधिपति श्री भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की दूती शर्मा शाप देती है तो महाकल के सर्प असुर इंद्र से अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। कहा जाता है कि इन सर्प सुरों एवं इंद्र के बीच घमसान युक्त हुआ था। इंद्र की दूति शर्मा से जब इन पराजित असुरों की भेंट हुई तो वह मंत्र का जाप कर रही थी, अतः वे इससे डर गए, इसलिए वे रसातल नामक लोक में निवास कर रहे थे। और अंतिम श्लोक है तको अगस्त पाताल नागलोक पतयो वासुकी प्रमुखा शंख कुलिक महाशंख श्वेत धन अंजन धृत राष्ट्र सत शंख चूर कुंबला अश्वत रेतेज दत्ता गयो महाभोगी हो महाअमर्षा नवसंती ये शुभा वै पंच सप्त दश सत सहस्त्र शीर्षा राम फासु विचरिता महामणयो रोचिन वह पाताल विवरती अमलिकरम स्वरोचिषा विभ्रमती तथा अवस्था रसातल के नीचे पाताले पाताल लोक में नागलोक पतया नागलोक के स्वामी वासुकी वासुकी प्रमुखा इत्यादि शंख शंख कुलिक कुलिक महाशंख महाशंख श्वेत श्वेत धनंजय धनंजय धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र शंखचूर शंखचूर कम्बल कम्बल अश्वत्तर अश्वत्तर देवदत्त देवदत्त आदय आदि महाभोगी अत्यंत भोगी महाअमर्षा प्रकृति के अत्यंत ईर्ष्यालु निवसंती रहते हैं। ये शाम जिनका निश्चय ही वे निसंदेह पंच पांच सप्त सात दस दस शत एक सौ सहस्त्र एक हजार शीर्षा नाम फणों वाले का फणासु उन फणों पर विरचिता स्थिर महामणय अत्यंत मुगवान मणि रोचस्वण तेज से पूर्ण पाताल विवरह पाताल लोक की गुफाएं तीर निकरम अंधकार राशि में स्वरोचिशा उनके क्षणों के तेज से विधर्मती भागते हैं। अनुवाद रसातल के नीचे पाताल या नागलोक नामक अत्यंत लोक है अन्य लोक है जहाँ नागलोक के स्वामी अनेक आसुरी सर्प रहते हैं यथा शंख कुलित महाशंख श्वेत धनंजय धंत्रास्त्र शंखचूर कंबल अश्वत्थ तथा देवदत्त उनमें से वासुकी प्रमुख है। वे अत्यंत क्रुद्ध रहते हैं और उनमें से कुछ के पांच कुछ के सात कुछ के दस कुछ के सौ और अन्य के हजार फण होते हैं। इन फणों से फणों में महामूल्य मणि सुशोभित है और इन मणियों से निकला प्रकाश बील स्वर्ग के संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन शीर्षक 24वें अध्याय का भक्ति विधान का तात्पर्य संपूर्ण हुआ। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्वलितं तस्मै श्री गुरु श्रीमद्भागवत के ये पंचम अध्याय पंचम स्कंद में जम्बूद्वीप के सारे लोगों का वर्णन है। हमें शुरुआत में बलि महाराज की लीला का वर्णन हुआ है। बलि महाराज का चरित्र का वर्णन हुआ है। एक भक्त किस प्रकार अपनी आंतरिक भावनाएं हृदय की भावना भगवान पर समर्पित करता है, चाहे बाहर से यानी कि शरीर पर कितने प्रहार क्यों न हो या शरीर की कैसी भी दुर्दशा क्यों न हो। बलि महाराज का स्वर्गलोक तक का जो जीता हुआ साम्राज्य एक ही कदम में वर्णन बोलने प्राप्त कर दिया, एक ही कदम। दूसरा कदम सारे स्वर्गलोक से भी ऊपर अन्य ब्रह्मांडों को लानकर गिरजा कभी अपने नाखून से छेद करके सारे ब्रह्मांडों का समूह कभी दूसरे कदम में ले लिया। तीसरे कदम में रखने की जगह दो कदम में ही सारा विश्व जो सर्जित है सबको ले बलि पर्वत हो क्या क्या तीसरा कदम तो बाकी है उसकी समर्थ नहीं थी। हाँ वो थोड़ा परेशान हुआ लेकिन अपनी भक्ति की बुद्धि उसने गवाई नहीं। वामनगढ़ ने उसको पास से पास से बांध लिया और ये पाताल का सर्वलोक पहला है जो सूतल पहला है वहां भेज दिया। सूतल के बाद पाताल महाकल और सातल और पाताल इत्यादि आगे बलि महाराज तो भेजने के लिए भगवान जो कदम का आधार रखते हैं अपने पांव तो उसके मत्थे पर रखा। बलि स्वार्पण किया वो प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना में बहुत सारे विषय की चर्चा है जो भक्तों को हमेशा याद रखनी चाहिए। हम लोग भौतिकवादी थे, थोड़े अध्यात्मवादी बन रहे हैं। भौतिकवादी होने के कारण हमें भौतिक प्रकृति पर हमें आसक्ति रहती है, हम शारीरिक अपने आप को अभी तक व्यवहार करते हुए मुक्त न होने के कारण भी हम बाहर की दुनिया के बड़े बल के सकंजे में आ जाते हैं। हमें परेशानी होती है यदि कुछ होता है तो हमें भी लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, ये परेशानी है। लेकिन बलि महाराज की परेशानी को देखो, सारे असुरों का राजा, असुरों का निवास स्थान अगम लोक, भूलोक भी नहीं, भूलोक भूलोक कहने की ये पृथ्वी के नीचे स्व स्वर्गलोक पृथ्वी के ऊपर कैसे हलाते हैं जो सात लोग होते हैं जो स्वर्गलोक की श्रेणी में आते हैं, स्वर्गलोक की तरफ ले जाते। लेकिन पृथ्वी के नीचे जो है वो जो सृष्टि ये तीनों लोग हैं, स्वर्ग लोक से नीचे पाताल लोक तक सृष्टि में जीव फैले हैं। और जीवों की गणना जब ब्रह्मा के द्वारा हुई है, ब्रह्मा के द्वारा जो प्रजापति पैदा हुए हैं, तो ये कश्यप और कद्रु कश्यप ही तो है ना, दीति आदिति कश्यप, और लेकिन कद्रु इत्यादि अन्य पत्नियां भी अच्छी, कद्रु और वनिता दो पत्नी और भी थी कश्यप की। महाभारत में ये बताते हैं कि सर्पों की उत्पत्ति कैसे हुई, हर पक्षी राज गरुड़ और अन्य पक्षियों की उत्पत्ति भी कैसे हुई। तो समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन में बहुत सारे महामूल्य रत्न निकलते थे और जो सारी संपत्ति देवताओं की थी, तो भगवान ने कितने अवतार दिए, कश्यप कश्यप रूपी भी अवतार लिया और मोहिनी रूपी भी अवतार लिया, और ये जो तिरसालु दानव और इतर नीचे के और ये सर्प आदि इनमें मुख्य मुख्य की बात आती है। लेकिन जब उसे पहले उच्चाई सवा नामक एक सफेद घोड़ा ऐश्वर्य संपत्ति वाला निकलने वाला, तब ये तिरसालु एक तिरसालु कद्रु वनिता से कुछ बेट मारती है, बेट मारना यानी क्या बोले हिंदी में बाजी बाजी खेलना चाहती है और कहती है कि तो देख वनिता ये बच्चे सवार घोड़ा सफेद होना चाहिए लेकिन ये सफेद नहीं होगा,
तो वहां का मेरे शास्त्र तो ये कहता है कि केस सफेद ही होना चाहिए। यदि मेरा थोड़ा भी काला निकला तो मैं ये जीत जाती हूं और वहीं तक तो मेरी गुलाम रहेगी। यदि तू जीत जाती है तो मैं तेरी गुलाम रहेगी। इस तरह तो मानी लेकिन तुम्हें सावधान बन रहे तो कुछ न कुछ छल खपट एक को करना है दूसरे को सहन करना पड़ेगा। तो कभी एक कश्यपि के पास गए कि पति दे पति दे, हमें ऐसे संतान की आवश्यकता है जो काले हो लंबे रस्सी जैसे। तो कश्यप ने उनके तथास्तु और वनिता ने भी कहा कि हमें ऐसी संतान दो जो आकाश में उड़ पाए और भगवान की सेवा कर। तो कदर की संतान तुरंत तो ये तो राक्षसी प्रजा है तो रातों रात में बहुत सारी संतान लंबे रस्सी जैसी काली बारिश पैदा हो गई और उन्होंने कहा ए जाओ एक घोड़े की पूछ पर लटक जाओ, जो निकलने वाला है तुरंत पहुंच जाओ घोड़े की पूछ पर लटक जाओ। ठीक है सुबह उठी कबीर ने कहा देख मैं जीत गई ये घोड़ा की पूछ काली है वनिता को हार गई। वनिता ने भी प्रार्थना की कि मेरी संतान भी तो हवा में उड़े पक्षी राज जरूर उनकी संतान नहीं मिलते बनकर आ गए। उसने देखिए तो यहां पर उछल कपट है तो पहले से ही वो घोड़े के पूछ पर जो छिपके हुए सब सांपों को पकड़ पकड़ के मारने लगे। तब से सांप और गुरुड़ में बैर बन गया। तो सांपों के रिवाज जो गिर कहलाता है वो जमन जो डर होता है अंदर बने रहे लेकिन वहां भी वो स्वर्ग का सुख अनुभव कर सकते हैं ऐसा ये अंतिम श्लोक में है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो मूर्खता इतनी अधर्म भयानक भय हमेशा भय में जीने वाले जीव है फिर भी अपनी पत्नी पूर्वक पुत्र परिवार इत्यादि के साथ रहने से इनको ये आनंद भय में भी आनंद ये तो कैसा ये भयभीत है अपने जीवन की रक्षा करने के लिए हमेशा उनको बने रहना होता है तो इनको आनंद कैसे यही माया का जो कोई व्यक्ति इस संसार में कहे कितने सुखी हूं तो समझदार एक पागल है इसकी खोपड़ी ठिकाने नहीं। तो इस तरह ये हमेशा भय में रहने वाले पाताल तक के निवासी नहीं यानी कि संसार का जो भय जिसमें गुणों द्वारा हमेशा बंधे रहना फंसे रहना जीवन की मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उनको ख्याल भी नहीं कि हमें मुक्त होने की आवश्यकता तो वो तो हमें मनुष्य योनि में ही ऐसी चेतना प्राप्त होती है जिसके द्वारा हम कुछ प्रयोग करके भी कोशिश कर सकते हैं कि हमारा ये जीवन का छुटकारा कैसे हो। तो यहाँ बलिमहाराज का चरित्र बहुत उत्कृष्ट है समझने के लिए वो पंडित कहते हैं, कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को भगवान ब्रह्मा, देवर्षि नारद, भगवान शिव तथा प्रहलाद जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। यदि पूर्वाचार्य तथा विद्वानों के पदचिन्ह पर चला जाए तो भक्ति का माप बिल्कुल ही कठिन नहीं है, किंतु जो गुणों द्वारा कलुषित हो चुके हैं उनके लिए चल पाना कठिन है। यद्यपि बलि महाराज अपने पितामह के पदचिन्हों का अनुसरण कर रहे थे, किंतु अपनी विनयशीलता वश यह सोच रहे थे कि वे ऐसा नहीं कर रहे। भक्ति के नियमों का पालन करने वाले सिद्ध भक्तों की यह विशेषता है कि अपने को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। यह विनयशीलता का दिखावा नहीं है। एक वैष्णव वास्तव में इस प्रकार सोचता है कि फलस्वरूप अपने परम पद को कभी स्वीकार नहीं करता। पद यानी उपाधि। मनुष्य अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को जब भगवान का अंश है वो न समझने के कारण कुछ और ही समझता है, तो ये सब उपाधि कहता है। तो सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम् ऋषिकेन ऋषिकेशम् सेवनम् भक्ति रुच्यते। हमें ये सारे पदों से मुक्त होना चाहिए। ये पद हम पर थोपे गए हैं, हमें खुद थोपे होंगे, हमारी इच्छा होगी या अपने आसपास रहने वाले समाज ने भी तो छोटी होगी। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, ये सब भौतिक पद है। पदों से मुक्त होने के लिए भगवान ने कुछ नियम बनाए और पद अनुसार नियम बनाए। हरेक अलग अलग पदों वाले के लिए एक नियम नहीं रखते। ब्राह्मण के ब्राह्मण का जो पद है तो पद का भी तो चरित्र है, उसके लिए नियम है, उसके कर्तव्य होते हैं जो दूसरों से अलग पड़ते हैं। समह दमह तपह शौचम शांति राजोमेव अवस्थान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावज इत्यादि क्षत्रिय के लिए युद्ध पलायन, युद्ध में वो पलायन नहीं कर सकता, लड़ना ही होगा। अगर जीतना है तो हम मरना है, जीते तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, मरेगा तो स्वर्ग भोगेगा। और तो वो कर्तव्य है, वो अपने पद के अनुसार, क्योंकि उसमें मुक्ति है, उसमें आगे प्रगति है। लेकिन एक भक्ति जो मूल पद है, मूल वो पद को हम भूल चुके हैं भौतिक अवस्था में, तो उसको प्राप्त करके कौन सद्भागी जीव ज्यादा होगा, कौन से बड़ा बड़भागी कोई जीव है ही नहीं जो भक्ति का पद स्थिर। मनसा कर्मणा धीरा निखिलपि अवस्थासु जीवन मुक्तस्य उच्यते। कोई भी अवस्था, कोई भी पद में यदि वो भक्ति करता है पूर्ण रूप से, मनसा कर्मणा धीरा, मन से, वचन से, कर्म से, तो हर एक परिस्थिति में निखिलपि अवस्था, चाहे कोई भी परिस्थिति में, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाले जो मनसा कर्मणा वाचन से करने वाले जीवन मुक्त कहलाते, उसका दूसरी मुक्ति की कोई अपेक्षा ही, आवश्यकता भी नहीं। तो ये फल मनुष्य के लिए भक्ति का उत्तम है। लेकिन जब भक्त किसान अन्य जगह भी है, राक्षस योनि में भी है, जैसे प्रहलाद महाराज जैसे जुटा थे, प्रहलाद का पोता बलि हुआ, उसका पिता विरोचन यानी कि प्रहलाद का बेटा राक्षस वो भक्त नहीं था। तो कौन भक्त होता है, कौन राक्षस होता है? जो देवधारी मनुष्य अपने को देह और देह की उपाधियों में ही फंसा रहता है वो खुद का भला नहीं करता था, दूसरे का क्या करेगा? खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए दूसरों को भी मारेगा। तो राक्षसों की ये प्रवृत्ति है। लेकिन बलि महाराज ने अपने दादा से ये सब सीखा, इसलिए वो भक्त बने। तो उनकी कीर्ति का ज्ञान, उनकी कीर्ति सुखदेव गोस्वामी जी ने कितनी जा सकती विशुद्ध भक्त जो महाजन है, उनकी कीर्ति का ज्ञान जब सुखदेव गोस्वामी के रूप में कितनी जा सकती, उनकी कृति तो अपार है। तो ये अपार कृति होने के बावजूद भी बलि महाराज कितने विनम्र रहे, भगवान ने मान लिया, ठीक हुआ, भगवान ने हमें सुकर में भेज दिया, ठीक है। नतमस्तक होकर वो भगवान की ऐसी बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं जो हमें सीखने के लिए आया। तो प्रार्थना हम बताते हैं, बलि महाराज ने कहा, मेरे पितामह प्रहलाद महाराज भी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महित पहचान, खुद का ही आत्मा का ही की पहचान की। उनके पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात भगवान नरसिंहदेव ने प्रहलाद को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रहलाद ने इनमें से किसी को भी नहीं स्वीकार किया। प्रहलाद तो न तो मुक्त होना चाहते थे भौतिक अवस्था से, न तो उनके पिता का साम्राज्य प्राप्त करना चाहते थे। सोचा कि भक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधा है, भक्ति में बाधक चलता है। अतः श्री भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। भगवान से जो कोई वरदान प्राप्त करता है वो भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है, भगवान की कृपा नहीं। भगवान से वरदान प्राप्त करना बलि महाराज के अनुसार, विशुद्ध भक्त के अनुसार भगवान की कृपा नहीं समझनी चाहिए। भक्त और भक्त तुरंत है भगवान की मेहरबानी है, इसका मतलब उसने भगवान की कृपा नहीं समझी। और धन दौलत को भगवान की कृपा से कहते जब ऊपर वाला देता है तो सब पर पार के देता है, तो कुछ नहीं देता। यदि भक्त को कुछ नहीं देता तो भक्त स्वयं को ये कृपा समझना चाहिए। यदि भगवान सब पर पार के देते हैं तो समझना कि ये कृपा है, ये भक्त की नीति है। भक्ति में यह समझना हर एक भक्तों के लिए विकास के लिए बहुत आवश्यक है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा। मैं आपका दास बना रहा हूं, और ये पति जीवों को आपकी महिमा समझाता रहो। ये पाताल लोक में जहां बस रहे हैं उस सब जगह हम आपकी महिमा का उसका वर्णन कर आपके पास भेजने का ही प्रयत्न करूंगा, ऐसा बोलता हूँ। तो जो गोपाल जी वो तात्पर्य में बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य कि शुद्ध भक्त अपने को परमेश्वर का दास का भी अनुदास माने, गोपी भक्तो पद कमल दास दासानुदास। वैष्णव दर्शन में किसी को प्रत्यक्ष दास नहीं बनना चाहिए। मैं भगवान का दास हूँ ऐसा कहना गलत है, मैं भगवान के दास का दास हूँ ये सही है, क्योंकि इसमें विनम्रता निजाहत होगी। दूसरा कि हम स्वतंत्र रूप से भगवान के दास नहीं बन सकते, भगवान के दास की कृपा बिना हमें भगवान का अनुग्रह भी नहीं प्राप्त हो सकेगा। तो वैष्णव दर्शन में किसी को प्रत्यक्ष दास नहीं बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज को ऐश्वर्यपूर्ण पद तथा ब्रह्म में तदाकार होने की स्वच्छंदता जैसे आशीर्वाद प्राप्त थे। स्वच्छंद होना यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वरदान का कैसे भी उपयोग करें, वो अपने उसे स्वच्छंद ही कहते हैं। और उन्होंने भगवान के दासों के भी दास की सेवा में रत रहना श्रेयकर समझा, इसलिए बलि महाराज ने कहा है कि चूंकि उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भौतिक ऐश्वर्य तथा बंधन से मुक्ति जैसे भगवान के आदेशों को आशीर्वादों को ठुकरा दिया था, इसलिए वे आत्महित को भली भांति जानने वाले थे। खुद का हित आशीर्वाद में नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी वो कहानी कहते हैं कि चार प्रकार के लोग आशीर्वाद के लिए महात्मा के पास आए। एक को कहा राजपुत्र तो राजा का बेटा है तो चिरंजीव, दूसरा मुनि का बेटा है तो मुनिपुत्र महाजीव, तीसरा एक भक्त आया तो कहते साधु जी वो वा भरोवा तेरी इच्छा में तू चाहे जी और मत, और एक बदल आया तो जो पकड़ करता है हर रोज तो कहते मार जी वो मार मर नी ऐसा। तो उसके शिष्य महात्मा जी गुरु जी बताओ ये अलग अलग प्रकार के आशीर्वादों का क्या रहस्य हमें बताओ। तो कहते देखो ये राजा का बेटा है, भौतिक सुख संपत्ति में जी रहा है, यानी कि उसको आशीर्वाद चाहिए। ऐसा आशीर्वाद जो कि और ज्यादा भौतिक सुख संपत्ति में वो ऐसा दटा पड़े कि जैसे वो माया में से बाहर ही नहीं निकल पाए, माया उसका खात्मा बोला देगी। जितना ऐश्वर्य बहुत ज्यादा उतनी मृत्यु नजदीक है। तो चिरंज बहुत लंबा जी बहुत अधिक भोग भोग और जल्दी खात्मा बोला देगी, पृथ्वी का बोझा बनता है। दूसरा मुनि पुत्र एक छोटा बेटा मुनि का, अपने पिता महा मुनि थे वो तप इत्यादि करते हैं तो बेटा भी उसका अनुकरण करता है। एक छोटी उम्र में सिर्फ कोई कर्म इकट्ठा नहीं करता जो हमेशा तपश्चर्या वाला जीवन जीता है, तो यानी कि जिसको कर्म बंधन नहीं है तो यह क्यों पड़ा रहा है, जल्दी मर जा तो फटाफट मर जा, जीना तेरे लिए कोई आवश्यक ही नहीं, तेरी तो मुक्ति अभी से हुई छोटी उम्र में जहाँ कर्मबंधन नहीं है, 12 साल के बाद कर्मबंधन लड़ता है, छोटी उम्र में जो तपस्या कर रहा है तो वो मुक्त कहलाता है। छोटी उम्र में भक्ति करने वाले बच्चे कितने सराहनीय होते हैं, भगवान की बहुत नजदीक होते हैं, जिन्होंने कोई छल कपट भी नहीं होता, जिन्होंने कोई अपनी इच्छा भी ऐसी जागृत नहीं हो जो भाव बंधन को होता है, ऐसे तो तुरंत यदि चले जाए तो भगवान के पास सीधे पहुंचे। इसलिए साधु ने कहा मुनि पुत्र मान जीव तेरे जीने के कोई अर्थ नहीं मर जाए जल्दी चाहिए। तीसरा आया साधु एक भक्त जो भगवान के प्रचार के लिए जी रहा है, भगवान की सेवा भक्ति में के लिए ही जी रहा है, उसे जीते जी भी भक्ति बनी रहेगी, मरते भी बाद कहीं भी जाए दूसरे शरीर में तो भक्ति चालू ही रहेगी। यानी कि तू तेरी इच्छा में आए चाहे जी चाहे मत, तेरी भक्ति चालू रहेगी। तो सनातन अवस्था में है, सनातन कर्म कर रहा है, सनातन धर्म का पालन कर रहा है, अन्य तो मानते ही है लेकिन करते नहीं। सारा भारत ऐसे पड़ा और सारी दुनिया भी पड़ी, कोई अपनी सनातन अवस्था में नहीं, एक भक्त को ही मौका मिलता है। चौथा आया वो बड़े खाटी बोले, उसे कतली बोले, क्या बोले यहाँ क्या बोले बंगाल में कसाई, कसाई जो कतल खाने में हर रोज जीवों को मारता है, यानी कि मृत्यु के दरबार में जी रहा है। मृत्यु के सामने को जी सकता है तो वह जीवन नहीं जी सकता है, वह नहीं मर सकता है, यानी कि भूत जैसा है। इसकी दशा न जीने की है न मरने की, यानी कि भूतों का कोई आधार नहीं, भूत की साथ जो होते हैं नहीं जीते हैं नहीं मरते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं, क्योंकि कहा भी आश्रय नहीं मिलता इन लोगों को। ऐसा है का जीवन बहुत बुरा है, वो अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि तो जबरदस्ती से व्यवसाय से दूसरों की कत्ल कर रहा है, या कि वो मृत्यु के दरबार में ही तो जी रहा है। जो मृत्यु के दरबार में जी रहा है तो उसके लिए मौत नहीं है, उसके लिए जीवन भी नहीं है। कौन सा जीवन मृत्यु के सामने हो सकता है? जीवन और मृत्यु दो पंगे होते हैं, कहां जीता है कहां मरता है, दोनों में से एक तो स्वीकार करना पड़ता है। ये उसी काम चलाओ अवस्था भी क्यों, लेकिन जीना पड़ेगा मरना पड़ेगा, लेकिन मृत्यु के सामने हर रोज मरता है तो उसका क्या, न जीता है न मरता है, मारने वाला न मरता है न जी सकता है। अस्वस्थामा ने जिस तरह से द्रौपदी के पांच बच्चों को मारा है उसकी दशा बुरी हो गई, वो न जी सकता है न मर सकता है, लेकिन लंबा उसका ये भूत जैसा भटकना चालू रहेगा, इसलिए वो भी चिरंजीव भूत जीवी कर रहा है। जो भी है कहने का मतलब है भक्त को अपनी जो मूल स्थिति है जिसे व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला कहलाता है, आत्मा की जिम्मेदारी क्या है वो जानने, ये माया में फंसने वाला तो ये भक्त की दशा ये है, विशुद्ध दशा, विशुद्ध जीव, विशुद्ध आत्मा भक्त हो सकता है। तो कैसे भी बाहर ऐसे परिबलों में यदि उसको जाना पड़ता है तो भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ता। इसलिए बलि महाराज ऐसे वरुण के पास से बंधे हुए भी और शुक्ल लोक में गए भगवान की शरणागति कर सकते हैं। किसी भी दशा में भगवान के शरणागत होना भक्त का ये सर्वप्रथम नियम। किसी भी दशा भगवान जैसे चाहेंगे वैसे रहेंगे, भगवान हमारा पोषण करेंगे, सब विश्वास भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान के अनुकूल कार्य करेंगे, भगवान के प्रतिकूल कार्य कोई नहीं करेंगे। तो बलि महाराज की ये सारी प्रार्थना भक्तों के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। किसी को कोई प्रश्न है? किसी खत्म हो गई? नहीं बचा रखी होगी। जब 12 साल के पहले उन बच्चों को जब मर जाते हैं उनको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। जलाना शरीर जलाना यानी कि कर्म जलाने के लिए ही जाना की दत्त करवाना। तब उसके पीछे जो सारी ज्ञान की भावना कर्मों को जलाने की आवश्यकता है, यदि नहीं है तो जिस शरीर द्वारा कर्म किए गए और शरीर को भी तो जलाओ। कर्म बंधन नहीं, क्योंकि वो आश्रित, वह स्वयं का कर्म कोई नहीं करता, स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आश्रित है तो पिता माता का कर्म। अभी अभी के तो बच्चे पिता माता को भी जानते नहीं, लेकिन ये शास्त्र ने बताया कि निर्दोष जो है वो तो भगवान की नजदीक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो कर्म कर्म दूषित होता है, इन गुणों द्वारा रंजित होता है। इसीलिए जब वो किसी के पिता के मार्ग में होता तो बच्चे का किया भी पिता को भुगतना पड़ता है। यदि पूरा किया पिता की जिम्मेदारी आ जाए और कोई जगत गुरु स्वरूप महाराज की